ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहमति और सहकार्य के साथ आगे बढ़ते हुए जनता के लिए परिणाम देने के हिसाब से काम करने का लुम्बिनी प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री ओली का आग्रह। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए 14 सूत्रीय प्राथमिकताओं को किया साझा। सभी 7 प्रदेशों में हृदय रोग की उपचार सेवा का विस्तार और काठमांडू में सुविधा संपन्न स्नायु रोग उपचार केंद्र स्थापना करने लगा साझा की योजना। और इसराइल ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के और इलाकों को खाली करने के जारी किए नए आदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्वाधार विकास के साथ ही उत्पादन और रोजगारी बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित करने का लुम्बिनी प्रदेश सरकार से आग्रह किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य सहित मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री निवास पालवाटार में हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कृषि औद्योगिकीकरण करते हुए उत्पादों के लिए बाजार विस्तार करने का सुझाव भी दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार चलाते समय किसने कितना हिस्सा लिया इसका विवाद नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री ओली ने सहमति और सहकार्य के साथ जनता के लिए परिणाम देने के हिसाब से काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल के साथ भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज हुई भेंट में द्विपक्षीय हितों और संबंधों के विविध विषयों में बातचीत हुई थी। मौके पर राष्ट्रपति पोर्टल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न्यूनीकरण के लिए नेपाल और भारत को मिलकर काम करने की जरूरत है। जवाब में भारतीय विदेश सचिव मिश्री ने जलवायु परिवर्तन को दोनों देशों के लिए चुनौती बताते हुए इस पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। इसी तरह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ भी भारतीय विदेश सचिव मिश्री ने शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि भारतीय विदेश सचिव मिश्री परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव सेवा लम्साल के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर नेपाल के 2 दिवसीय औपचारिक दौरे पर आज काठमांडू आए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लिए 14 सूत्रीय प्राथमिकताएं साझा की। आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री पौडेल ने कहा कि परिवर्तन की चाह से बारीक ढंग से विचार विमर्श करके कार्यक्रम को सार्वजनिक किया गया है और स्रोत तक को सुनिश्चित कर क्रियान्वयन का उद्देश्य रखा गया है। मंत्री पोर्टल द्वारा सार्वजनिक किए गए कार्यक्रम में अस्पताल की सेवा, स्वास्थ्य बीमा को प्रभावकारी बनाने से लेकर 3 तहों के दोहरे तेहरेपन को हटाने और नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार तक के विषय समेटे गए हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू में सुविधा संपन्न स्नायु रोग उपचार केंद्र की यथाशीघ्र स्थापना के लिए पहल करने और शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केंद्र को 500 शैया के साथ विस्तृत कर हर प्रदेश में हृदय रोग उपचार सेवा का विस्तार करने की योजना है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि मॉनसून से सृजित आपदा से तुलनात्मक रूप में क्षति कम होना पूर्व तैयारी का परिणाम है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की आज की बैठक में गृहमंत्री लेखक ने ये बात कही। सांसदों ने प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए भी आचार संहिता की आवश्यकता को महसूस किया है। आज राष्ट्रीय सभा विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 पर दफावार विचार विमर्श में सांसदों ने कहा कि काउंसिल ने पत्रकार और आम संचार माध्यम के लिए जिस तरह आचार संहिता बनाई है वैसे ही विधेयक में ही अध्यक्ष और संचालक समिति सदस्यों के लिए भी आचार संहिता की व्यवस्था होनी चाहिए। विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करते हुए डॉ विदुराम भूषाल ने कहा कि काउंसिल के स्वनियमन के लिए भी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय सदस्यों ने आज भी 11 विभिन्न प्रस्तावित विषयों पर धारणा व्यक्त की। बैठक में केंद्रीय सदस्य डॉ शेखर कोइराला ने कहा कि वर्तमान गठबंधन का प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। बैठक में केंद्रीय सदस्यों अर्जुन नरसिंह केसी, डॉ नारायण खड़का, आनंद प्रसाद ढुंगाना लगायत 30 वक्ताओं ने अपनी अपनी धारणा व्यक्त की। बता दें कि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक कल सुबह 11 बजे पुनः बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र की जारी स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने स्थानीय तहों को आधार बनाकर समाजवाद का आधार तैयार किए जाने के विषय पर जोर दिया। आज पार्टी मुख्यालय पेरिस नोएडा में हुई स्थायी समिति की बैठक में धारणा रखने वाले सदस्यों ने कहा कि जनता की समस्याओं और मुद्दों पर केन्द्रित होकर जन परिचालन का कार्यक्रम लाया जाना चाहिए। बैठक में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन और समृद्धि के अभियान से वर्तमान सरकार को पीछे न हटने देने के लिए खबरदारी करने की धारणा भी रखी। ये जानकारी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने दी। आज की बैठक में 14 सदस्यों ने धारणा व्यक्त की। बता दें कि बैठक कल भी बुलाई गई है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में युवा की भूमिका आवश्यक है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 के अवसर पर ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। नेकपा एकीकृत समाजवादी के पदाधिकारियों का चयन केन्द्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक द्वारा किया जायेगा। पार्टी में पदाधिकारियों के लिए आकांक्षी अधिक होने के बाद सभी 7 प्रदेशों से भूगोल क्षेत्र तथा संतुलन मिलाकर केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक से पदाधिकारी चयन किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय सदस्य सोम प्रसाद पांडे ने दी। बता दें कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी की पूर्ण बैठक भाद्र के दूसरे सप्ताह में काठमांडू में होगी। चितवन स्थित बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल देश के सभी प्रदेशों में सेवा विस्तार करेगा। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉ शिवजी पौडेल ने कहा कि संघीय सरकार के कार्यक्रम अंतर्गत केंद्रीय कैंसर अस्पताल इसी भाद्र महीने से सभी प्रदेशों में सेवा विस्तार करेगा। बता दें कि सभी प्रदेशों के एक सरकारी अस्पताल में कम से कम 5 बेडों का कैंसर उपचार कक्ष संचालित करने के हिसाब से सेवा विस्तार किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के और इलाकों को खाली करने के नए आदेश जारी किए हैं। इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के दौरान जारी किए गए इस नए आदेश की वजह से हजारों फलस्तीनियों को पलायन करना पड़ेगा। ये फलस्तीनी गजा शहर के मध्य पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में रह रहे हैं। आदेश में इन निवासियों से कहा गया है कि ये इलाके युद्ध के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों में से अधिकतर लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें कई सारे लोगों को बार बार विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शनिवार को हुए हमले में 100 लोगों की मौत हो गई थी। इसराइल ने कहा था कि इसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे और हमले में 19 आतंकी मारे गए। इसराइली सेना की ओर से एक्स लोगों के फोन पर टेक्स्ट और ऑडियो संदेश के माध्यम से चेतावनी जारी की जा रही है। मैसेज में कहा गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत सभी को आश्रय स्थल को खाली करना होगा। इसराइली सेना ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हमास के लगभग 30 ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें सैन्य संरचनाएं, टैंक रोधी मिसाइल लॉन्च पोस्ट और हथियार भंडारण सुविधा स्थल शामिल हैं। वहीं इस्लामिक जिहाद सशस्त्र वर्ग ने कहा है कि लड़ाकों ने खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में जमा हो रही इसराइली सेना के खिलाफ मोर्टार दागे हैं। चेतावनी जारी होने के बाद आधी रात में हजारों लोग आश्रय स्थलों को छोड़कर पश्चिम में मवासी और उत्तर में दीर अल बलाह की ओर जा रहे थे। भारतीय राज्य राजस्थान के भरतपुर जिले में आज बाणगंगा नदी में नहाते समय 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घटना बयाना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर गांव के समीप की है। पुलिस के हवाले से पीटीआई ने बताया कि श्रीनगर गांव के 8 युवक गांव के पास से बह रही बाणगंगा नदी में नहाने गए थे, तभी नदी में एक गहरे गड्ढे में 7 युवक फंस गए और डूब गए। उनमें से एक युवक सुरक्षित बच निकला और उसने गांव में जाकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी 7 शवों को बाहर निकाला। थानाधिकारी बलराम यादव ने बताया कि सभी मृतक युवक आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहमति और सहकार्य के साथ आगे बढ़ते हुए जनता के लिए परिणाम देने के हिसाब से काम करने का लुम्बिनी प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री ओली का आग्रह। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए 14 सूत्रीय प्राथमिकताओं को किया साझा। सभी 7 प्रदेशों में हृदय रोग की उपचार सेवा का विस्तार और काठमांडू में सुविधा संपन्न स्नायु रोग उपचार केन्द्र स्थापना करने लगायत साझा की योजना। और इसराइल ने दक्षिणी गजा में खान यूनिस के और इलाकों को खाली करने के जारी किए नए आदेश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।